नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलियु बागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಜ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನಾ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ आचार्य भक्ति भावना से पूर्व कल के दिन अरहत भक्ति भावना आई, आज आचार्य भक्ति भावना है और अगले दिन बहुश्रुत भक्ति भावना है. बहुश्रुत भक्ति यानी बहुत श्रुत को धारण करने वाले मुनि महाराज जो उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं, उस मुनि महाराज की भक्ति हम कल के दिन भाएंगे. आज आचार्य भक्ति भावना को लेकर के अपनी विशुद्धि को हम उत्कर्ष पर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे और कर रहे हैं. यह भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण पड़ता है. इसके माध्यम से भी आत्मा की विशुद्धि परम सीमा पर पहुंच सकती है, यह बताया गया है. आचार्य वस्तुतः सबके लिए गुरु होते हैं. आचार्य का स्थान गुरु का स्थान होता है और अरहंत भगवान का स्थान उपास्य देवता का स्थान माना जाता है. उपास्य देवता भी उपास्य हैं और गुरु भी उपास्य माने जाते हैं. गुरु हम किसको माने, ये प्रश्न आता है तो कहते हैं जिनके पास रत्नत्रय हो, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र हो, उन्हीं को गुरु मानना चाहिए. उन्हीं से नियम व्रत आदि लेना चाहिए, अन्य से नहीं. ये हमारे लिए विवेक भी रहना चाहिए क्योंकि यह सम्यक्त्व का अंग है. असंयमी व्रत देने के और लेने के लायक नहीं होता. असंयमी से लेना भी नहीं चाहिए और असंयमी असंयमी को देना भी नहीं चाहिए. यह मोक्ष मार्ग का नियम है. जैन धर्म में दिगंबर जैन धर्म इस धर्म का नाम है. इस धर्म का नाम के अनुसार भी काम भी होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, दिगंबर गुरु को देखकर रत्नत्रयधारी वे है या नहीं, इतना तो देखना ही चाहिए. रत्नत्रय को नहीं देखेंगे तो वेश ही दिगंबरत्व तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है. गुरु तो गुरु होते हैं, परमार्थ गुरु उन्हीं का नाम है जिनके पास रत्नत्रय हो. रत्नत्रय होने के बाद तो वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं और साधु परमेष्ठी बनने के बाद ही यदि वे साधु परमेष्ठी किसी का उपकार लेने का विकल्प लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो वे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं. रत्नत्रय तो मूल है. आचार्य परमेष्ठी के पास भी रत्नत्रय होता है और साधु परमेष्ठी के पास भी रत्नत्रय होता है और उपाध्याय परमेष्ठी के पास होता है. रत्नत्रय होना ही चाहिए. पंच परमेष्ठियों में से चार परमेष्ठी तो रत्नत्रय से युक्त होती ही हैं. ये चार परमेष्ठी मोक्ष मार्ग पर चलने वाले माने जाते हैं. ये मार्गस्थ कहलाते हैं. और सिद्ध परमिष्टि मंजिलस्त कहलाते। मंजिलस्त यानी मंजिल पर पहुंचे हुए, मार्ग पर चले बिना मंजिल में पहुंच सकते हैं क्या? मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, इसलिए मार्ग पर चलना अनिवार्य हो जाता है। और जो मार्ग पर चल रहे हैं, जिनके पास सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं, वे ही गुरु के कोटि में आते हैं और उस गुरु से ही नियम, व्रत, संयम इत्यादि लिया जाता है। यदि अन्य से लिया जाता है तो वह धर्म का कारण न बनकर पापाश्रव का भी कारण बन सकता है, क्योंकि अविवेक होने से हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं होता है और सम्यक दर्शन न होने के कारण वह व्रत फलदायी नहीं हो सकता। गुरु के पास से ही व्रत आदि लिया जाता है। गुरु कौन? तो लक्षण बता दिया। गुणों से जो बड़े होते हैं वे गुरु। गुण कितने होते हैं? तीन होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीन गुण होते हैं। तीनों गुणों से युक्त को हम गुरु कहते हैं। इतना हो गया। अब आज हम आचार्य भक्ति भावना भा रहे हैं। आचार्य की भक्ति होना ही चाहिए, किंतु किस तरह से हो? निर्दोष हो, सदोष न हो। भक्ति में दोष पाया नहीं जाना चाहिए। भक्ति निर्मल होनी चाहिए, निर्विकार होनी चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। तो भक्ति करने वाला कौन? भक्त। और जिसकी भक्ति की जा रही है वो कौन है? गुरु, आचार्य परमिष्टि, अरहंत भगवान के उपरांत हमारे लिए यदि कोई उपकारक हैं, हमारी जिम्मेदारी को लेकर हमारे कल्याण का विकल्प कोई कर सकते हैं तो वो आचार्य परमिष्टि हैं। आचार्य परमिष्टि स्वयं कहते हैं, मैं साधु से छोटा हूं। और साधु परमिष्टि कहते हैं, हमसे बड़े हैं गुरु। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं दोनों? साधु परमिष्टि आचार्य परमिष्टि को बड़े मानते हैं और आचार्य परमिष्टि साधु परमिष्टि को बड़े कहते हैं। तो ऐसा कहना दोनों का गलत है क्या? गलत तो हो ही नहीं सकता, दोनों गुरु हैं। इनको वो बड़े कह रहे हैं और उनको ये बड़े कह रहे हैं, तो इसमें क्या रहस्य है? तो रहस्य ये है, गुणों की अपेक्षा से तो आचार्य परमिष्टि बड़े हैं। उनके पास 36 मूल गुण होते हैं और बड़े इसलिए भी हैं कि हमारा उपकार वो कर सकते। साधु परमिष्टि हमारा उपकार नहीं कर सकते। साधु परमिष्टि तो निर्विकल्प हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते वो। आचार्य परमिष्टि जिम्मेदारी भी लेते हैं। साधु परमिष्टि की जिम्मेदारी कौन से परमिष्टि लेते हैं? आचार्य परमिष्टि लेते हैं। उपाध्याय परमिष्टि की जिम्मेदारी कौन से परमिष्टि लेते हैं? आचार्य परमिष्टि। तो आचार्य परमिष्टि जिम्मेदारी लेने वाले वो बड़े हैं। किस अपेक्षा से? गुणों की अपेक्षा से और उपकार करने की दृष्टिकोण से आचार्य परमिष्टि बड़े हैं। एक पक्ष ये हुआ, आचार्य को बड़े कहने के लिए ये पक्ष ये बता रहा है कि वो उपकारक हैं और गुणों से भी बड़े हैं, इसलिए वो वंदनीय हैं उपाध्याय परमिष्टि के माध्यम से और साधु परमिष्टि के माध्यम से। किंतु साधु परमिष्टि आचार्य परमिष्टि से भी बड़े हैं। किस अपेक्षा से? तो निर्विकल्प, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में आया है, निर्विकल्पता की दृष्टिकोण से साधु परमेष्टि को आचार्य परमेष्टि बड़े समझते हैं। कितने निर्विकल्प रहते हैं, शांत रहते हैं, ऐसे शांति से आचार्य परमेष्टि बैठ नहीं सकते। और जो जितना शांत है मोक्ष मार्ग में वो उतने ही बड़े हैं, और जो जितने विकल्प में पड़े हैं वे बड़े विशुद्धि की अपेक्षा से नहीं हो सकते। निर्विकल्पता की दृष्टिकोण से तो नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य परमेष्टि कहते हैं साधु परमेष्टि इतने निर्विकल्प हैं, इतने निर्विकल्प हैं, वे हमसे पहले वंदनीय हैं। निर्विकल्पता की दृष्टिकोण से आचार्य परमेष्टि ये कहते हैं कि हमसे पहले वंदनीय है वो। और तीन प्रदक्षिणा दे करके आचार्य परमेष्टि साधु परमेष्टि की वंदना कर सकते हैं। जैन धर्म अनेकांत है, घबराओ नहीं। आचार्य परमेष्टि साधु परमेष्टि की तीन प्रदक्षिणा देकर वंदना करेंगे, नमोस्तु बोलेंगे। और साधु परमेष्टि ध्यान से उठने के बाद निर्विकल्प है ना, ध्यान में जब बैठते हैं तो तीन प्रदक्षिणा देकर के आचार्य परमेष्टि नमोस्तु करते हैं। शुद्धोपयोग में है वो। गणधर परमेष्टि समस्त साधु परमेष्टियों को नमोस्तु करते हैं, जो शुद्धोपयोग में बैठे हैं उनको तीन प्रदक्षिणा देकर नमोस्तु। मैं गणधर बनकर यहाँ पर विकल्पों को संभाल रहा हूँ, मेरे से बड़े तो देखो वो हैं जो ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में बैठे हैं वो निर्विकल्प हैं, वो बड़े हैं, अभी वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और मुझे केवल ज्ञान होने वाला नहीं। निर्विकल्पता केवल ज्ञान का कारण है, विकल्प केवल ज्ञान का कारण नहीं है। इस मामले में तो आचार्य परमेष्टि छोटे हैं और अपने आप को छोटे मानकर वे प्रदक्षिणा देकर के नमोस्तु बोलते हैं। ये विकल्प है इसलिए ये बड़ा नहीं। लेकिन जब विकल्प नहीं रहता, शांत हो जाता है, तो ये भी बड़ा बन जाता है, इसके बिना भी काम नहीं चलता। संगीत सुना रहा, देखो संगीत सुना रहा, 8-10 दिन हो गए, छोड़ो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया कह रहा है। भक्ति कर रहा है, इसको भी पुण्य लगा होगा ना? लगा होगा? नहीं लगा? ये ऐसा भक्त है, भक्ति तो करता है, जरा भी पुण्य बांध करके पुण्य का फल भी नहीं पाता, और इतना निर्विकल्प है, कुछ भी नहीं बोलता, जोर से बोले, धीरे से बोले, चिल्लाकर बोले, सुखी दुखी कुछ नहीं होता, वीतराग है, इतना वीतराग हो करके भी इसको मोक्ष नहीं। और हम इसके जैसे वीतराग बन जाए ना, तो अंतर्मूर्त में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती, केवल ज्ञान हो सकता है। आचार्य परमेष्टि साधु परमेष्टि को जब नमस्कार करते हैं तो उनकी विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि को देखकर विशुद्धि बढ़ना ही चाहिए। और साधु परमेष्टि आचार्य परमेष्टि को जब देखते हैं तो उनकी विशुद्धि बढ़ती है। वो सविकल्प, लेकिन उनको देख करके साधु परमेष्टि की विशुद्धि चरम सीमा पर पहुंच जाती है। जाती है कि नहीं जाती? जाना ही, चरम सीमा पर जाना ही चाहिए। यहां पर साधु परमेष्टि बैठे हैं। अगर अकस्मात आचार्य उधर से आए तो क्या हो जाएगा? अपने आप को भूल जाओगे आप, इतनी विशुद्धि बढ़ जाएगी। आचार्य परमेष्ठी उनके लिए तो विकल्प का कारण है, वो इनके स्वयं की विशुद्धि तो बढ़ती नहीं शिष्यों को देखकर। जब शिष्यों की ओर दृष्टि जाती है तो विशुद्धि से नीचे आते हैं, और जब अपनी आत्मा में डूब जाते हैं तो विशुद्धि बढ़ती है। उस समय न गुरुर न शिष्यो न हीनो न दीनो चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, वे आत्मा में लीन रहते शिष्यों का विकल्प छोड़कर। जब वो सामायिक में बैठ जाते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं एक घंटे के लिए कोई किसी का संबंध नहीं है। सामायिक में बैठ जाते हैं तो वो साधु परमेष्ठी बन जाते हैं, और किसी दूसरे के ऊपर अनुकंपा करने के परिणाम को प्राप्त होते हैं, सविकल्प बन जाते हैं, शिष्यों को निमित्त बना करके विकल्प आ जाते हैं तो विशुद्धि घट जाती है। दूसरे का उपकार करते समय खुद की विशुद्धि घटती है, और जो इनके उपकार के कारण से अपनी विशुद्धि को बढ़ा रहा है वो आचार्य परमेष्ठी से ऊपर उड़ जाते, वो बड़े बन जाते। वे उपकार करने के लिए जब आते हैं इनकी विशुद्धि बढ़ गई, और ये आचार्य परमेष्ठी से बड़े हो गए उसी वक्त। हे गुरुवर, मैं प्रायश्चित लेने आया हूं, विशुद्धि के साथ आया हूं, और प्रायश्चित दे दो, तो गुरु को विकल्पित किया शिष्य ने, और उनको वो जिम्मेदारी ले चुके हैं तो फिर प्रायश्चित देना ही पड़ेगा। तो प्रायश्चित देने का विकल्प भी, ये उपकार का भाव भी आत्मविशुद्धि को घटा देता है। देखो हमारे पंच परमेष्ठी कैसे, कितनी बड़ी बातें हो रही हैं, कितनी सूक्ष्म बातें, कितनी गहरे आत्मा की बातें। ऐसी चर्चा कहीं अन्य उपास्य देवताओं में और गुरुओं में मिलता है? इसलिए चार ही मंगल हैं, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल, केवली प्रणीत धर्म मंगल। तीसरे मंगल में कौन है? आचार्य परमेष्ठी कहाँ है? आचार्य परमेष्ठी का नाम ही नहीं उसमें। हाँ, साधु तो छोटे हैं, आचार्य परमेष्ठी बड़े हैं, मंगल में आचार्य परमेष्ठी को क्यों नहीं रखा? मंगल किसको कहते हैं? सविकल्प दशा को मंगल नहीं कहते, निर्विकल्प दशा ही मंगल है। तो निर्विकल्प दशा एक ही परमेष्ठी में है, दो परमेष्ठी में नहीं? साधु परमेष्ठी में निर्विकल्पता है और इसलिए वो मंगल हैं, और ऐसे मंगल आचार्य परमेष्ठी नहीं है, उपाध्याय परमेष्ठी नहीं है, इसलिए उनको नहीं रखा गया है। साहु मंगलम, साधु परमेष्ठी ही मंगल। और फिर आचार्य, आचार्य जब साधु बनेंगे तब वे भी मंगल। जब तक आचार्य पद पर हैं, विकल्प के पद पर हैं, वे उत्कृष्ट मंगल नहीं है। हाय मंगल, हाय उत्तम, हाय दशलक्षण धर्म इत्यादि, हाय ध्यान तप इत्यादि सभी हैं, इस दृष्टिकोण से छठे सप्तम गुणस्थान से नीचे नहीं है। छठे सप्तम गुणस्थान में है तो मंगलपना तो है ही, लेकिन उत्कृष्ट मंगलपना नहीं है। किसके पास? आचार्य परमेष्ठी के पास। इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं मेरे पास उत्कृष्ट मंगलपना नहीं है, और उस उत्कृष्ट मंगल पने को पाने के लिए मुझे आचार्य पद त्याग किए बिना उत्कृष्ट मंगल में नहीं आ सकता। मैं एक साधु केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आचार्य परमिष्टि को केवल ज्ञान नहीं होगा। गणधर परमिष्टि तब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए जब तक भगवान महावीर को मोक्ष नहीं हुआ, और एक नीचे की जिम्मेदारी जब तक संभालते थे वो, तब तक तो उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। सुबह सुबह भगवान महावीर को मोक्ष हुआ और फिर उनकी दिव्य ध्वनि को झेलना, भव्य जीवों का उपकार करना, ये विकल्प जो था ये केवल ज्ञान के लिए बाधक था। बाधक है कि नहीं? और बाधक यदि नहीं होता तो महावीर भगवान से पहले भी मोक्ष जा सकते थे। महावीर भगवान के समो शरण में रहने वाले कई मुनि महाराज केवल ज्ञान प्राप्त करके, किसी की गंध कुटी की रचना हो गई, उनकी दिव्य ध्वनि करने लगी केवल ज्ञान के पश्चात। महावीर भगवान उपदेश देते बैठ गए और गणधर परमिष्टि उस उपदेश को झेलते रहे, भव्य जीवों का समो शरण में कल्याण करते रहे। गणधर परमिष्टि को केवल ज्ञान नहीं हुआ। अन्य सामान्य मुनि महाराजों को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। क्यों हो गई? हाँ, मंगल थे, मंगल मंगल मंगल। उत्कृष्ट मंगल पना के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए आचार्य परमिष्टि कहते हैं वे उत्कृष्ट मंगल वाले साधु परमिष्टि मेरे से बड़े हैं, मैं उनकी तीन प्रदक्षिणा देकर नमोस्तु बोलूंगा। त्रिकाल नमोस्तु, त्रिकाल नमोस्तु। गंधर परमिष्टि भी साधु परमिष्टि की वंदना करते हैं, उपाध्याय परमिष्टि भी साधु परमिष्टि की ही वंदना करते हैं, उन्हीं को उत्कृष्ट मंगल मानते हैं। साधु परमिष्टि जितने कर्मों की निर्जरा करते हैं विशुद्धि के माध्यम से, उतनी निर्जरा आचार्य परमिष्टि और उपाध्याय परमिष्टि नहीं कर सकते। जो जितने मंगलपन में उत्कृष्ट वो उतने कर्म निर्जरा में भी उत्कृष्ट। कैसा है मोक्ष मार्ग? कैसा है मोक्ष मार्ग? आचार्य परमिष्टि सब कुछ छोड़े हुए हैं, आचार्य पद पर हैं, और फिर भी वो कहते हैं मैं बड़ा नहीं हूं, और हमारे पास थोड़ा धन इकट्ठा होता है मैं स्टैंडर्ड हूं। कितना फर्क है। बाह्य पुद्गल पदार्थ को लेकर के हमारे लिए कषाय उत्पन्न होती है, कषाय, और आचार्य परमिष्टि को कोई कषाय नहीं, केवल एक शिष्यों का उपकार करने के परिणाम है, और ये अनुराग है, ये भी लोभ कषाय। लेकिन अनुकंपा करते समय इस लोभ के बिना तो अनुकंपा हो ही नहीं सकती। संज्वलन लोभ है ना? संज्वलन लोभ के उदय में जो कषाय परिणाम है ये प्रशस्त लोभ कषाय है, जो कि पर के अनुकंपा के लिए ये कषाय काम करती। कषाय कषाय ही है, प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, वो कषाय विकल्प में डाल देती है आत्मा को, और आत्मा सविकल्प हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकती। दोनों विकल्पों को छोड़ना पड़ता है आचार्य परमिष्टि को। ये उनको भीतर वेदना रहती है कि मुझे ये प्रशस्त विकल्प भी कब छूट जाए। इसने निष्प्रह रहते हैं, इतने अलिप्त रहते हैं, अटैचमेंट ज्यादा रखते नहीं, निर्विकारता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन शिष्य आकर के बैठ जाता है तो आंख खोलकर दृष्टि देनी ही पड़ती है। क्यों? गुरु और शिष्य का संबंध हो गया है, माँ बाप और पुत्र का संबंध हो गया है। अब पुत्र आ ही गया है तो आगे आकर के बैठेगा ना सामने, माँ बाप क्या करेंगे, देखना ही पड़ेगा कि नहीं। आचार्य परमिष्टि पिता के समान हैं और साधु परमिष्टि पुत्र के समान है। आत्मकल्याण नहीं होता परोपकार के काल में, परोपकार का ही विकल्प रहता ही, ये प्रशस्त कषाय है। ये प्रशस्त कषाय केवल ज्ञान की प्राप्ति में सहयोग नहीं दे सकता, हा? जरूरी है, तीर्थ इसी से चलेगा, इसलिए गंधर्व परमिष्ठि ने जिम्मेदारी संभाल ली। किसी एक को तो जिम्मेदारी संभालना ही पड़ता है, जो व्यवहारज्ञ हैं, जो आत्मज्ञ हैं, व्यवहार को भी जानते हैं और आत्मा को भी जानते हैं, दोनों में निर्विकल्पता के साथ उपकार कर सकते हैं। स्वयं को संभाल सकते हैं, पर को नहीं संभाल सकते, ऐसे को आचार्य पद का विकल्प लेना ही नहीं चाहिए। व्यवस्था है लेकिन वो क्या बता रहे हैं हम, जिनके पास क्षमता है उनको लेना चाहिए और जिनको क्षमता नहीं है नहीं लेना चाहिए। क्या क्षमता? पर का कल्याण करते करते स्वयं का कल्याण भी कर सकते हो और सारी कषायें कंट्रोल में हो। अशुभ कषाय भी कंट्रोल में होना चाहिए और शुभ कषाय भी कंट्रोल में रहना चाहिए, दोनों दुखदायी लगना चाहिए निरंतर प्रति समय। ये है क्षमता। निर्विकल्प रह करके ही दोनों कार्य संभालना, घर में पुत्र और पिता कैसे रहे, निर्विकल्पता से रहे, और पिता में निर्विकल्पता नहीं है तो स्वयं को नहीं संभाल पाएंगे और पर को भी संभाल नहीं पाएंगे। जो स्वयं को पर को संभालते संभालते स्वयं को संभालने की क्षमता रखते हैं उनको आचार्य पद देना चाहिए। गुरु को गुरु ही देते हैं ना किसी शिष्य को, तो उस शिष्य को देना चाहिए जो शिष्य इस प्रकार के, और ऐसे शिष्य एक आध ही होता है ऐसा नहीं, कई हो सकते हैं, लेकिन सबको नहीं देना चाहिए। ये भी है, उसमें से एक को दे दिया जाता है। क्यों? एक संघ की व्यवस्था है ये। संघ मतलब कौन सा संघ? साधु संघ, जो साधुओं को निर्विकल्प रख सकते हैं उनको आचार्य पद दिया जाता है। साधुओं को आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाने की क्षमता होनी चाहिए, निरंतर उनका सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र निर्मल रहे है या नहीं ध्यान देना पड़ता, और उसमें दोष लग गए तो वो आते हैं किसके पास? आचार्य। जैसे आपका बेटा कुछ गलती कर दिया तो किसके सामने सुनाएगा? माँ के सामने, पिता के सामने जल्दी नहीं जाता वो, क्योंकि माँ की तरफ से बहुत छूट होती है, बोनस मिलता है वहां जरा। पिता के पास ऐसा नहीं होता, पिता जरा गंभीर रहते हैं, ऐसा कैसा कर गया, ऐसा कठोर बोल दिया तो कपने लगता है, और माँ कैसे कहते क्या हो गया बेटा, ये कैसी गलती कर दिया तुमने। तो भाषा में भी अंतर, पिता की भाषा में और माँ की भाषा में बहुत बड़ा अंतर रहता है और धीरे धीरे जाता है। पहले कंपाउंडर के पास ही जाएगा वो, फिर डॉक्टर के पास। मरीज है, गलती कर दिया है, तो माँ कंपाउंडर है और पिता डॉक्टर है। वैसी ही व्यवस्था यहां है। आचार्य परमेष्टि कहते हैं, मैं डॉक्टर तो बन गया लेकिन ऑपरेशन करते करते मेरा कल्याण तो नहीं होगा, मैं ऑपरेशन ही करता बैठ गया। और मरीज कहता है, डॉक्टर साहब आप हैं इसलिए हमारा चल रहा है, हम बच गए, हमारे बाल बाल बच गए, प्राण बच गए, आप नहीं होते तो हम क्या बचते, इसलिए आप डॉक्टर ही बने रहो, डॉक्टर ही बने रहो आप, आप जब तक हम हैं ना आप रहो, शतायु बन करके रहो। हाँ, डॉक्टर इज गॉड, गॉड की पदवी, बिल्कुल ठीक है। साधु परमिष्टि, आचार्य परमिष्टि को भगवान ही कहेंगे, आचार्य भगवान आप ही हमारे प्राणों के रक्षक हैं, रत्नत्रय हमारे प्राण हैं, उन प्राणों के रक्षक आप हैं। अगर हमारे रत्नत्रय में दोष आ गया तो हम किससे पूछे, वर्तमान में तो अरहंत भगवान है ही नहीं, उनके पास जा करके हम निवेदन करें, हे भगवान ऐसे दोष लगे हैं, और दोषों को उनके सामने कह भी दिया तो प्रायश्चित तो देते नहीं, चुपचाप ही बैठते हैं, प्रायश्चित देते नहीं, बोलते नहीं। तो एक अरहंत परमेष्टि के पास कोई गणधर की आवश्यकता क्यों पड़ गई, अरहंत परमेष्टि किसी को प्रायश्चित नहीं देते। गुरु प्रायश्चित भी देते हैं, गुरु बोलते भी हैं शिष्य के साथ, पर अरहंत किसी के साथ नहीं बोलते। टाइम हो गया, ओम कह दिया, चुपचाप, बस खत्म काम। ये अरहंत परमिष्टि। अब गंधर्व परमिष्टि की जिम्मेदारी आई, ओम का क्या अर्थ है प्रभु, ऐसा ऐसा बोल दिया भगवान ने, लेकिन क्या करूं, ये सब ओम का क्या अर्थ है, सब लगाने वाले, अर्थ लगाने वाले, संग्रह करने वाले, ये सब गंधर्व का काम। और फिर जो बार बार आकर के अरहंत भगवान का दर्शन कर वैरागी बनकर सैनी बन रहे हैं, मुनि दीक्षा ले रहे हैं, केश लोंच कर रहे हैं, सब गंधर्व परमिष्टि को साक्षी बनाकर और अरहंत को साक्षी बनाकर दीक्षा लेते रहते हैं समोशरण में, उनको कौन संभालने वाला, गंधर्व परमिष्टि। गंधर्व परमिष्टि उनको संभालते, और उनको कोई शंका आ गई तो गंधर्व परमिष्टि के पास ही जाना पड़ता है। अकाल में तो अरहंत भगवान बोलेंगे नहीं, और यदि बोलते भी हैं तो बहुत पुण्य का उदय हो किसी एकाद का, लाखों में एक का, बहुत पुण्य का उदय हो तो अकाल में भी दिव्य ध्वनि खिरती। पर गंधर्व परमेष्टि जब कभी भी जाओ, अस्पताल खुला है, ऑपरेशन करवाओ, गंधर्व परमेष्टि के द्वार, गुरु के द्वार तो हमेशा खुले रहते हैं, भगवान के द्वार हमेशा खुले नहीं रहते। इसलिए गुरु पद को सविकल्प कहा, अरहंत पद को और साधु पद को निर्विकल्प कहा। सविकल्प पद दो हैं, आचार्य और उपाध्याय। उपाध्याय को पढ़ाने की जिम्मेदारी रहती है, साधुओं को ज्ञान देना, शास्त्र पढ़ाना। साधु परमेष्टि मरीज है, उपाध्याय परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि डॉक्टर हैं, और ये डॉक्टर इन मरीजों को क्या बना रहे हैं। आचार्य परमेष्टि कहते हैं, हे साधु परमिष्टियों, मेरे समान आचार्य बनो, मेरे समान बनो ये नहीं कहते, मेरे से बड़े बनो ये कहते। तुम साधु हो, मैं बड़ा नहीं बन सकता जैसे तुम बन सकते, इसलिए मेरे जैसे मत बनो, मैं सैकल दशा में अटका हुआ हूँ। तुम मेरे से बड़े बनो, साधु हो, भगवान बन जाओ, भगवान बनने की कैपेसिटी के अंतर्मूर्त बैठ जाओगे तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। मैं सहयोग देता हूँ, जो कुछ भी चाहिए ले लो, अरिहंत बनो, भगवान बनो यानी अरिहंत बनो। और साधु परमिष्टि इस मायने में बड़े, आचार्य परमिष्टि के लिए ये भगवान बन सकते हैं और मैं भगवान नहीं बन सकता। गंधर्व परमिष्टि के सामने कई मुनि महाराज अरहंत बन गए। गंधर्व परमिष्टि गुरु पद को लेकर बैठे, छठे सप्तम गुणस्थान में बैठे, और वो साधु परमिष्टि छठे सप्तम गुणस्थान वाले जिनको की प्रायश्चित देते थे, जिनका देखभाल करते थे, वो क्या बन गए? अरिहंत बन गए। वो गंधर्व परमिष्टि का मन भी छटपटाता रहता है कि कब मैं साधु बनूं और इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। उनको शांति नहीं रहती, विकल्प अवस्था में शांति ही नहीं रहती। मैं साधु परमिष्टि होता तो डायरेक्ट अरहंत पद पर जल्दी जाता, लेकिन आकर के अटक गया। महावीर भगवान के पास आया और इनको देख करके इतनी विशुद्धि बढ़ गई कि मुझे मनोपरे ज्ञान हो गया, एकाएक ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान, तीनों चारों ज्ञान एक साथ हो गई। इतनी विशुद्धि बढ़ गई महावीर भगवान को देख करके, संयम के भाव जग गए, मानसतम को देख करके सम्यक दर्शन हुआ। कितनी महिमा है, कितना अतिशय है यहाँ। जब द्वार में प्रवेश कर किया, समोषण के द्वार के अंदर, समोषण के अंदर जाते ही मानसतम दिखा और मेरा सारा मिथ्यात्व गल गया। और भगवान के पास जाकर के जब अरहंत को देखा, महावीर को देखा, तो मेरे मन में संयम लेने के भाव आ गए, मुनि बनने के भाव आ गए, और तत्काल दिगंबर दीक्षा हो गई और अंतर्मूर ध्यान में बैठ गए। पहले सामायिक में गंधर्व परमिष्टि को मति, श्रुत, अवधि, मनःपरे ज्ञान, चार ज्ञान गिफ्ट में मिल गए, विशुद्धि बढ़ गई। अब इतनी विशुद्धि बढ़ाने की क्षमता, जो अंतर्मुहूर्त काल में चार ज्ञान को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, उनको क्या केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था? थोड़ा सा और प्रयत्न करते तो। लेकिन वहां पर जिम्मेदारी को संभालने वाला कोई नहीं था। इंद्र भी खड़े थे, जो बुला करके ले आए थे उनको, आपको तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान, हे गुरुवर। उन्होंने कहा ही, हे गुरुवर, गुरुपद दे ही दे दिया, आप ही हमारे गुरु हैं और आपके बिना तो यहाँ भव्य जीव कल्याण नहीं कर सकेंगे। भगवान की वाणी को झेलने की क्षमता तो आपके पास ही है और झेल कर समझाने की भी शक्ति आपके पास है, क्योंकि आपके पास चार ज्ञान हैं। यहाँ पर और कोई चार ज्ञान के ज्ञाता नहीं है, इसलिए सबके गुरु आप ही हैं। आपको गुरु पद संभालना चाहिए। निवेदन करने लगी सभी, आप बैठिए, आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए, भगवान क्या बोलते हैं हमको समझाइए। हमको समझ में नहीं आता, वो ओम कहते हैं, चुपचाप हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता, उसको तो आप ही समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इसलिए आप बैठ जाइए गुरु स्थान पर, उच्च स्थान पर सभी मुनि महाराजों ने बिठाया, और भी मुनि महाराज थे वहां पर, उनको मति श्रुत अवधि मन परिज्ञान चार ज्ञान प्रकट नहीं हो रहे थे, और चार ज्ञान जिसको नहीं होते उनको गणधर पद नहीं मिलता। गणधर पद भी एक विकल्प पद ही है, आचार्य पद ही। गण को संभालने वाले, गण को धारण करने वाले गणधर, यानी कि गणपति। पति यानी अधिकारी, किसके अधिकारी? गण के अधिकारी। वहां जो मुनि संघ था, वहां जो भव जीव बैठे थे, उनको भगवान के दिव्य ध्वनि को संभालने का, समझने का और समझाने का सामर्थ्य किसको है? एक को ही, एक को ही है। अभी तो एक को ही है, और उनको गणधर बनना पड़ेगा। दीक्षा लेते ही जिनको चार केवल क्या चार ज्ञान होते हैं वे गणधर बन ही जाते हैं। और महावीर भगवान के ऐसे गणधर बने थे, कितने? 11 गणधर थे। महावीर भगवान के समोचरण में 11 गणधर थे, हाँ? नहीं, 11 संघ नहीं बने, 11 गणधर मतलब संभालने वाले 11 बन गए, पर एक है, एक ही संघ है, भगवान महावीर और ये गणधर। कैसे गणधर? एक मुख्य गणधर, फिर उससे छोटे गणधर, जो जिनको बाद में केवल ये हो गया, चार ज्ञान हो गए, वो दूसरे नंबर के गणधर, तीसरे नंबर के गणधर, जिसको जैसे जैसे ज्ञान हो गया था वो 11 थे, और वो 11 लोग सभी संभालते थे। उसमें मुख्य कौन थे? गौतम गणधर। गौतम गणधर दिव्य ध्वनि को झेलने वाले बड़े गुरु थे, वो अकेले थे। बड़े तो अकेले ही होना चाहिए, ये मोक्ष मार्ग की व्यवस्था है। देखो तीर्थंकर एक समय में कितने होते हैं, एक क्षेत्र में एक समय में तीर्थंकर कितने होते हैं? एक ही होते हैं ना, एक ही। क्या दो होते हैं? नहीं होते। और समोशरण दो आपस में मिल सकते हैं क्या? चक्रवर्ती चक्रवर्ती से मिल सकता है क्या? नहीं मिलता। तीर्थंकर तीर्थंकर से मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। एक क्षेत्र में दो को तीर्थंकर प्रकृति का बंद होकर दो की समोचरण की रचना नहीं हो सकती। विदेह क्षेत्र में भी ऐसा ही है, एक क्षेत्र में एक ही तीर्थंकर रहते हैं, फिर दूसरे क्षेत्र में दूसरे तीर्थंकर, दूर दूर रहते हैं, लेकिन आपस में दोनों समोचरण कभी भी मिलते जुलते नहीं है। ये मोक्ष मार्ग की व्यवस्था है। बढ़ जाते और धर्म प्रभावना को जब रोकते हैं, धर्म प्रभावना ऑटोमेटिक होने लगती है, ये भी बात है। धर्म प्रभावना का अर्थ क्या? निर्विकल्प रहना। और धर्म की अप्रभावना का अर्थ क्या? धर्म की प्रभावना करने का विकल्प ही धर्म की अप्रभावना है। यही है। धर्म की प्रभावना नहीं करनी पड़ती, अप्रभावना से बचना पड़ता है, यही प्रभावना है। अप्रभावना से बचना ही प्रभावना है, तो अप्रभावना से कैसे बचो? विकल्प ही मत करो, कुछ भी नहीं करना वो धर्म है, कुछ भी ना करने का यही करने का वही धर्म है, और वही अप्रभावना है। और कुछ भी करने का विकल्प आ गया तो अप्रभावना। देखो झगड़ा क्यों हो रहा है मालूम, कि उसमें भी एक प्रकार का मोक्ष है। मोक्ष मोक्ष उसमें भी मोक्ष की प्राप्ति है। कैसे मोक्ष की प्राप्ति? जल्दी से जल्दी कौन मोक्ष मार्ग को त्यागता है, इसका कंपटीशन है। त्यागता है, त्यागने का कंपटीशन है। त्याग मोक्ष है, त्याग मोक्ष है। तो कौन सा त्याग? मोक्ष मार्ग का त्याग ही मोक्ष है। हम मुक्त हो गए मोक्ष मार्ग से, ये भी तो मोक्ष है एक प्रकार का। इसमें कंपटीशन चाहिए तो कंपटीशन कर सकते हैं कि हमको मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए, हमको तो आचार्य पद चाहिए। तो मोक्ष मार्ग को छोड़ेंगे, आचार्य पद पर बैठेंगे। तो वैसे पद को लेकर के क्या करोगे? सही मार्ग मालूम नहीं, यानी आगम मार्ग का ज्ञान ही नहीं है, तो ये सभी बातें आती हैं सामने, गड़बड़ हो जाता है। आचार्य पद लेने वाले लेने से पहले कहते हैं, इससे बचने का मार्ग कौन सा है, जल्दी सोचूं और बच जाऊं। बचने के लिए सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्षमता तो है, लेकिन ये विकल्पदायक पद है, मेरी साधना इसके कारण से रुक जाती है, विघ्न आता है इसमें, इसलिए उससे बचने की चेष्टा करते। जिसके पास सामर्थ्य रहता है वो भी बचने की चेष्टा करते। लेकिन बच नहीं पाते, उनको पकड़ करके साधु परमिष्टि लोग कहते हैं, आप बैठिए, तो आप नहीं बैठेंगे तो हम क्या करेंगे। ये विकल्प आता। और जो आचार्य परमिष्टि होते हैं, उनके गुरु होते हैं ना, जिनके पास क्षमता है, साधु परमिष्टि है, आचार्य बनने की क्षमता है, सबको संभालने की क्षमता है, वो तो है ना, वहां वो साधु परमिष्टि है ना, वो बचना चाह रहे हैं इस पद से, क्षमता होते हुए भी बचना चाह रहे हैं। और इसलिए ये साधु परमिष्टि के सही लक्षण हैं। जो लेना ही चाहते हैं वो साधु परमिष्टि नहीं, जो विकल्प में पढ़ना चाहते हैं वो साधु परमिष्टि कैसे? वो तो कषाय हो गई, वो तो आशा हो गई, वो तो मान हो गया। मान कषाय की वशीभूत होकर बताया है, शल्यों के भेदों में ये भी आता है। निदान शल्य के तीन भेद हैं, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान और भोगकृत निदान। भोगकृत निदान आचार्य पद इत्यादि की अपेक्षा करना, ये मान कषाय के बिना हो ही नहीं सकता। खुद ही अपेक्षा कर रहा है, बचने का नियम है, ये बचना चाहिए उससे, लेकिन खुद ही अपेक्षा करने लग जाए तो वो अप्रशस्त निदान की कोटि में रखा है। अप्रशस्त निदान यानी सम्यक्त्व रहित अवस्था में ऐसे भाव होते हैं, मुझे बड़ा स्थान चाहिए, बड़ा पद चाहिए, मुझे बड़ा अधिकार चाहिए, ये भाव। तो आचार्य बनने के बाद किसके अधिकारी बनोगे? साधु परमेष्टियों पर अधिकारी बनेंगे हम, और उनको ऑर्डर करते रहेंगे। वाह वाह, ऑर्डर करने वाले, ऑर्डर करने के भाव आ गए तो आचार्य परमेष्टि बनने की योग्यता उनमें है नहीं, और साधु बनने की भी योग्यता नहीं है, मोक्ष मार्ग में ही नहीं है वो अभी। गुणस्थान पंचम से नीचे पांचवें गुणस्थान से नीचे, और इसलिए इसको निदान बंद के कोटि में रखा है। ये अप्रशस्त निदान है, पदों की कामना ये अप्रशस्त निदान है। कामना के लिए मोक्ष मार्ग में कोई स्थान है क्या? कामना के लिए, भावना के लिए है तो आचार्य पद की भावना भाए? साधु परमेष्टि तो आचार्य पद की भावना भाना ही नहीं चाहते। अरहंत पद फिर भी ठीक है, हम तीर्थंकर पद की भावना भा रहे हैं, आचार्य पद की भावना कहाँ है बताओ? इसमें नहीं है। आचार्य बनने के लिए कितनी भावनाएं भानी पड़ती है, इसका कोई विधान है? नहीं है। इसकी भावना नहीं और ये बनना ही ठीक नहीं, इसलिए इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि ये सविकल्प पद है। अरहंत पद एक निर्विकल्प पद है, आचार्य पद सविकल्प पद है, साधु निर्विकल्प है। साधु निर्विकल्प हैं तो श्रेष्ठ है ना, सविकल्प पद की अपेक्षा क्यों करेगा साधु? निर्विकल्प पद की ही साधना करेगा ना। निर्विकल्प पद कौन है फिर? साधु पद। और इसको पाने वाला जो पद है, जिसकी भावना भा करके हम पाते हैं, वो कौन सा पद? अरहंत पद, तीर्थंकर पद, अरहंत पद। भावना से मान कषाय के वशीभूत होकर के कभी भी मिलने वाला नहीं है। शिक्षा लेने के बाद भी होते हैं अरहंत परमेष्टि पद की भावना भाते हुए कर्म निर्जरा करते हैं साधु परमेष्टि। साधु परमेष्टि पद भी निर्विकल्प है, आचार्य अरहंत पद भी निर्विकल्प है, आचार्य पद और उपाध्याय पद ये सविकल्प पद है। इसकी कामना साधु परमेष्टि नहीं करते। निर्विकल्प अरहंत पद की, अरहंत पद की निर्विकल्प पद की कामना करते हैं, क्योंकि वो स्वयं निर्विकल्प है। कौन सा धर्म? हाँ, साधु परमेष्टि दीक्षा लेते समय दश धर्म प्रकट हो जाते हैं। दश धर्म प्रकट हो जाते, दश धर्म प्रकट होने के बाद कषाय रहती है क्या? नहीं रहती। तो कषाय पूर्वक आचार्य पद आदि की कामना जग सकती है क्या साधु में? नहीं जग सकती। तो आचार्य पद और उपाध्याय पद से तो वो बचना ही चाहते हैं। देखो, कितने ही मुनियों को द्वादशांग ज्ञान का पूरा ज्ञान प्राप्त रहता है। गुण की अपेक्षा से देखो तो 25 मूल गुण अनेक मुनियों के पास है, लेकिन अनेक मुनि क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाने का विकल्प लेंगे? नहीं, वो पढ़ाते नहीं। क्यों नहीं पढ़ाते? ज्ञान होकर के भी नहीं पढ़ाते। वो पढ़ाना एक विकल्प पद है, और जिम्मेदारी लेकर के यदि पढ़ाना शुरू कर दे तो जिम्मेदारी तो एक विकल्प का ही कारण बनता है। किसी की जिम्मेदारी लेकर के नहीं पढ़ाते हो। आचार्य परमेष्टि स्वयं आचार्य पद पर आने के उपरांत स्वयं को आचार्य मानते नहीं, क्योंकि वह विकल्प है। स्वयं को आचार्य कहते नहीं, मानते नहीं, वो इतना निर्विकल्प रहते। आचार्य देखो, वो स्वयं के लिए आचार्य नहीं है, दूसरों के लिए है। तो हमारे दृष्टि में वो आचार्य हैं, वो स्वयं आचार्य नहीं है। हाँ, हमारी दृष्टि में वो आचार्य हैं, तो क्यों हैं? हमारे कल्याण के लिए, हमारे ऊपर हमको उपकार करने, उपकार करने वाले हैं। हम उपकृत उनके माध्यम से होने के लिए उनको आचार्य स्वीकार किया है, तो वो स्वयं के लिए आचार्य नहीं। हमारे दृष्टिकोण से वो आचार्य है। अगर कोई आचार्य परमेष्टि ये अनुभव करे कि मैं आचार्य हूं, गलत है। वो अनुभव यही करते हैं, मैं एक साधु परमिष्टि हूं, रत्नत्रयधारी हूं, निर्विकल्प हूं, किंतु शिष्य जब आकर के निवेदन करता है कि भगवान मेरा कल्याण करो, भगवान बना दिया उनको, आप निर्विकल्प हो, लेकिन जब जब मैं थोड़ा बहुत आपके पास आऊंगा, प्रायश्चित मांगूंगा, कल्याण का मार्ग का उपदेश चाहूंगा, उस समय मेरे लिए उपकार भी किया करो, आशीर्वाद मिल गया तो फिर करना पड़ेगा ना। इसको कहते हैं आचार्य पद। जब आओगे तब देखूंगा, पर जब नहीं आओगे तो मैं तो साधु परमिष्टि हूं। जब आओगे कुछ निवेदन करोगे, उपकार की बात होगी कि मुझे ऐसे ऐसे रत्नत्रय में दोष आए हैं और आप प्रायश्चित दे दो, तो उतना विकल्प, प्रायश्चित देने का विकल्प आचार्य का रहता है। केवल उनके दोषों को निवारण करने के लिए ये पद है, मार्ग पर लगाने के लिए ये पद है, आदेश देने के लिए नहीं। आचार्य परमिष्टि कभी किसी को आदेश नहीं देते, आदेश अपने तरफ से होता है। वो आदेश में कषाय भी हो सकती, पर पूछने पर यदि मार्गदर्शन करते हैं तो इसमें कषाय नहीं रहती। पूछने से पहले ही यदि स्वयं ही आदेश करें हाँ, संकेत दे सकते हैं, संकेत यानि आदेश नहीं, संकेत यानि ऐसे ऐसे कल्याण के आपके लिए संकेत हैं, आप जो करना चाहो वो कर सकते हैं, एज यू लाइक। आदेश देंगे ना तो फिर कषाय आ गई, कषाय आ गई। इसको इनको कहते हैं आचार्य परमेष्टि। ये वंदनी पूजनी है नमोकार मंत्र में ही, और आचार्य पद की गरिमा, आचार्य पद की महिमा, आचार्य पद का गहरा अर्थ जाने बिना आचार्य हो गए न स्वयं का कल्याण और न पर का कल्याण, दोनों डूब गए। उपाध्याय हाँ, मंगल की कोठी में तीनों परमिष्टि हैं, लेकिन आचार्य परमिष्टि क्या कह रहे हैं? देखो, आचार्य परमिष्टि कहते हैं मैं उसमें नहीं हूं, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो मंगल नहीं है। मंगल तो है, रत्नत्रय है क्या नहीं, रत्नत्रयधारी मंगल ही होता है, लेकिन आचार्य परमिष्टि कहते हैं मैं साधु हूं। आचार्य परमिष्टि कहते मैं साधु हूं, उस रूप में उसमें हूं, पर आचार्य के रूप में उसमें नहीं हूं, क्योंकि आचार्य कहते ही एक विकल्प आता है, वो विकल्प मंगल में स्वीकार नहीं है। आचार्य परमिष्टि ये बता रहे हैं कि मैं साधु हूं, उस रूप में उसमें हूं। साधु हूं उस रूप में उसमें हूं, लेकिन आचार्य हूं इस अपेक्षा से मैं उसमें नहीं हूं, क्योंकि लोग जब भी बोलते हैं साहु मंगलम, आचार्य मंगलम, कोई उच्चारण नहीं करता। क्या करता है? उपाध्याय मंगलम। यदि साधु से बड़े आचार्य हैं तो साधु को हटा करके आचार्य मंगलम रखते, तो जो आचार्य होते हैं वो तो साधु होते ही हैं, जो आचार्य होते हैं वो उपाध्याय भी हो सकते हैं, पढ़ाने का भी विकल्प उनको हो सकता है और दीक्षा शिक्षा का भी विकल्प हो सकता है, तो आचार्य मंगलम कहते हैं तो सब कुछ तीनों आते। लेकिन आचार्य मंगलम, ये आचार्य शब्द को रखा नहीं, क्यों नहीं रखा? आचार्य पद सविकल्प है इसलिए नहीं रखा, समझ में आ रहा है? आचार्य पद सविकल्प है इसलिए नहीं रखा, साधु पद को रखा, ऐसी व्यवस्था है ये। वहां आचार्य पद नहीं है, आचार्य जरूर हैं उसमें, लेकिन आचार्य पद स्वीकृत नहीं है। जो जो आचार्य हैं उनका जो रत्नत्रय स्वरूप पद है क्या नहीं? आचार्य परमिष्टि के पास रत्नत्रय पद है क्या नहीं? उस रूप में तो उसमें विद्यमान है, उस अपेक्षा से वो आचार्य भी साधु परमिष्टि ही हैं, और साधु परमिष्टि पवित्र हैं, मंगल हैं। किंतु आचार्य पद को लेकर के साहु मंगलम में नहीं हो सकते, क्योंकि वह विकल्प पद है, विकल्प स्वीकृत नहीं है। और देखो एक बात और रहस्य, केवल ज्ञान जब भी होगा वो किससे होगा? साधु पद से ही होगा। अगर आचार्य पद को भी, आचार्य परमिष्टि को भी साहू मंगलम इसमें रखते तो केवल ज्ञान होता क्या? फिर मंगल कैसे? जिससे केवल ज्ञान नहीं होता वो मंगल पद नहीं है। ये है गणित, ये गणित है। जिससे केवल ज्ञान नहीं हो सकता वो मंगल कैसे? उपाध्याय पद मंगल नहीं है, आचार्य पद मंगल नहीं है, किस अपेक्षा से? अपेक्षा है यहां उपाध्याय परमेष्टि मंगल नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। पद मंगल नहीं है वो, क्योंकि हमको केवल ज्ञान दे नहीं सकता। हाँ, वो तो मतलब वहां पर मान कषाय क्या, संज्वलन कषाय के उदय से ही काम होता है, पद पर रह करके पद का जो संभाल होता है ना, संज्वलन कषाय के उदय से ही होता है। कोई शिष्य आ गया, अनुकंपा कर रहे हैं, तो संज्वलन लोभ कषाय का उदय है, ये लोभ कषाय का उदय मंगल है कि अमंगल है? ये अमंगल है। जब पद का कार्य करेंगे ना तब अमंगल है। अब देखो, एक शिष्य के कारण से गुरु ये पद संभालते हैं, तो देखो तो सही, ऐसा हाथ उठाते हैं तो अमंगल बन जाते हैं आचार्य परमिष्ठ। सोचो ये इसका क्या अर्थ? कल्याण हो तो कल्याण हो, ये उपकार के भाव आ गए ना। इसलिए दीक्षा के बाद तीर्थंकर भगवान आशीर्वाद तक नहीं देते। सुनो जैन धर्म कैसा है, कितना गहरा है। आप नमस्कार करते हैं और कोई आशीर्वाद नहीं देते हैं तो आप सोचते हैं कि महाराज तो आशीर्वाद ही नहीं देते, उनको बहुत कषाय है, घमंड है। महाराज को भी घमंड होता है क्या? उनको घमंड, आशीर्वाद तक नहीं देते, महाराज को भी घमंड होगा। साधु अगर आशीर्वाद आपको नहीं देते हैं तो तुमने मंगल का दर्शन किया, मंगल का, अमंगल का दर्शन नहीं किया, और ऐसा करते हुए तुमने दर्शन किया तो अमंगल का दर्शन करके आए और अपने आप को धन्य मानने लगे। कितना सूक्ष्म है यहां, बातें सूक्ष्म है। वंदनीय है। देखो सुनो, आपको हाँ। सुनो, समझ में नहीं आया, एकाग्रता से नहीं सुना आपने। आचार्य पद मंगल क्यों नहीं? आचार्य पद को संभालते संभालते किसी को केवल ज्ञान आज तक हुआ है क्या? हुआ है क्या? इसको ध्यान रखो, बात को ध्यान रख करके चिंतन करो। जब जो पद केवल ज्ञान में बाधक है वो मंगल कैसे? वो पद शिष्य को मंगल भले ही कराता हो, शिष्य को मंगल कराने का पद है वो, लेकिन खुद को अमंगल बना रहा है ना, खुद को केवल ज्ञान से वंचित रख रहा है ना वो, फिर मंगल कैसे? पद मंगल नहीं होता उस आचार्य परमिष्ठ के पास जो रत्नत्रय है वो मंगल है। तो उस दृष्टि से उसमें है, यही तो बताया अभी, रत्नत्रय की दृष्टिकोण से आचार्य परमिष्ठी भी साधु परमिष्ठी है, परंतु शिष्य को उपकार करने की दृष्टि से वे आचार्य हैं। उपकार का जब विकल्प आता है तो आचार्य, और उपकार का विकल्प नहीं है तो साधु तो है ही वो, फिर आचार्य कहाँ है? अब जब जब वो उपकार करते हैं तब तब केवल ज्ञान नहीं होता। मैं जब भी जाऊंगा आचार्य श्री के पास, आचार्य श्री हमको ऐसा दोष लगा है, प्रायश्चित दो। तैयार होंगे कि नहीं? वो क्यों होंगे? दीक्षा दिया है इसलिए। अब दीक्षा ही नहीं देते तो तैयार भी नहीं होते। जिसको दीक्षा देते हैं उसी को प्रायश्चित देते हैं। दीक्षा किसी दूसरे से लिया आपने और प्रायश्चित किसी दूसरे के पास ले रहे हैं, वो देंगे नहीं आपको? अगर देते हैं तो वो अज्ञानी है, आगम में ऐसा है नहीं। अगर देते हैं वो अज्ञानी है, आगम को जानते नहीं। जो जिसको दीक्षा देता है उसी से प्रायश्चित लिया जाता है। और आचार्य परमिष्ठी के पास हम जाते हैं, प्रायश्चित मांगते हैं, तो प्रायश्चित देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। उस समय केवल ज्ञान का कारण बनेगा क्या वो अवस्था, विकल्प की अवस्था? मुझे भी केवल ज्ञान नहीं होगा, उनको भी नहीं होगा। मुझे लेने के भाव हैं, मैं भी प्रवृत्ति में हूं, और उनको देने के भाव हैं, वो भी प्रवृत्ति में है। दोनों को केवल ज्ञान नहीं है। यहां गुरु और शिष्य, ये शिष्यत्व है। शिष्य क्या? गुरु के पास नम्र होकर के प्रायश्चित मांगने लगे, ये शिष्यत्व है। ये शिष्यत्व है। ये शिष्य का काम करते हुए भी उनको भी केवल ज्ञान नहीं है। प्रायश्चित मांगते समय केवल ज्ञान कभी नहीं होगा, प्रायश्चित लेने के बाद निर्विकल्पता जब आती है, अब अपने आप में जब डूबते हैं, तो वहां पर न गुरु न शिष्य न विकल्प हो, कुछ भी नहीं है। वहां तीनों हैं, नहीं है। शिष्य शिष्य नहीं, गुरु गुरु नहीं, गुरु शिष्य नहीं, शिष्य गुरु नहीं, कोई आपस में संबंध नहीं, और कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं, लेन देन के विकल्प नहीं, लेने के भी विकल्प नहीं और देने के भी विकल्प नहीं। तो उस दशा में दोनों को केवल ज्ञान होता। जब तक हम अपने आत्मा को नहीं संभालते, आत्मा में डूबकर निर्विकल्प नहीं होते, गुप्ती को धारण नहीं करते, ऐसा नहीं बैठते, तब तक केवल ज्ञान नहीं है। ये रत्नत्रय है, ये रत्नत्रय पद निश्चय रत्नत्रय कहलाता है। ये निश्चय रत्नत्रय में रहते हुए ही केवल ज्ञान होता है, विकल्प दशा में केवल ज्ञान नहीं होता। मुझे प्रवचन देना पड़ रहा है, इस समय केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान कहता है प्रवचन बंद करो और ध्यान में बैठो, तब आऊंगा मैं। तो ये प्रवचन देना, ये जो विकल्प है ना, ये सब विकल्प है। ये भी एक आचार्य पद की तरह ही है। ये प्रवचन देना उपकार करने का विकल्प, और इस समय साधु को क्योंकि केवल ज्ञान नहीं होता, इसलिए इस समय आत्मा मंगल नहीं है। और आप सबसे ज्यादा नमोस्तु करते हैं। महाराज बहुत अच्छा प्रवचन दे, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। प्रवचन देते समय साधु अमंगल है, विकल्प है। सही वंदनीयपना ये है, देखो सोचो इसको, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं ये। ऐसा बैठ करके जब हम प्रवचन देने का, इधर जाने का, उधर जाने का, प्रायश्चित लेने का, स्वाध्याय करने का, कोई भी विकल्प मन में न लेते हुए जब ध्यान में है, तो साहु मंगलम इसको बोलते हैं। इस साधु पद को नमस्कार किया जा रहा है मंगल पद में। ये व्यवहार में विकल्प वाला जो पद है ना, ये व्यवहार से ही वंदनीय है। निश्चय से तो निश्चय रत्नत्रय ही मंगल है, व्यवहार रत्नत्रय व्यवहार से मंगल है। निश्चय रत्नत्रय निश्चय से मंगल है, वास्तविक मंगलपना तो निश्चय का ही। ये जैन धर्म, ये है जैन धर्म। इसको सोचो, टाइम बहुत हो गया। आत्मा मंगल बने, आचार्य परमिष्टि हमारे गुरु हैं, गुरु मानकर उनके माध्यम से हमें क्या सीखना चाहिए, हमें निर्विकल्प बनने का रास्ता खोजना चाहिए, उनसे उपकार लेना चाहिए और अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। आरोग्यासाठी उभा राहायचं आहे।
जय बोलो नियम सागरमुनी महाराज की। सगळ्यांनी आरोग्य करून घ्यायचंय। इतना तो करना गुरुवर जब प्राणी सतन से जाए।